आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने आरजीपीवी के पुनर्गठन के साथ 3 नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। और इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया, मां और दोनों शावक स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। शिखर सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्राणियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 200 नवीन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कार्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री आकाशवाणी तिराहे के पास पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुवीर सिंह बाबूजी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजना 6 प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना और शासन तथा सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडार सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकते हैं। सतना जिले में लगातार बारिश होने से मंदाकिनी, टमस और सिमरावल सहित कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया है। चित्रकूट के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
सतना जिला में कल रात कई इलाकों में 8 से 10 सेंटीमीटर का बारिश 3 से 4 घंटे के अंतराल में गिरा है। उसके कारण सतना का सभी नदी और नाला उफान पर है। हमने सभी जगह को सुबह 6 बजे सभी जगह को हमने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ये अपील है कि लोग, मतलब काफी लोग को नुकसान हुआ है, वो दुखी भी है, हम सुशहर कर रहे हैं, बट हमने ये बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं है। सब आपदा किसी एक को टारगेट करके नहीं आया, सबको आया है। सब इसमें सब लोग मिले हुए हैं और जो भी उनका नुकसान है उसका भरपाई किया जाएगा, सर्वे किया जा रहा है, जो भी उचित उनका मुआवजा सब चीज मिल जाएगा, बट अभी के लिए सुरक्षित रखें, हिम्मत रखें, ये हमने बताया।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 41,000 करोड़ रूपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरजीपीवी का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 3 नए प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग में 9 गठित जिलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जू प्रबंधन के अनुसार दोनों शावक और उनकी मां स्वस्थ हैं और फिलहाल गुफा में सुंदरी के साथ हैं। शावकों का अभी लिंग परीक्षण नहीं किया गया है। इनके जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जू प्रबंधन शावकों के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। पूरी तरह स्वस्थ होने और विकास की पुष्टि के बाद ही उन्हें दर्शकों के सामने लाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की ओर से एजीयू स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड 2025-26 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 148 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ने आयोजन के बारे में जानकारी दी।
कि मैंने आज से करीब 8-10 साल पहले मध्य प्रदेश की एकेडमी छोड़ी थी और आज भी मध्य प्रदेश मुझे याद करता है। इस अवसर पर जब खिलाड़ियों के उत्थान की बात आती है, उनके उनके अचीवमेंट के बाद उनको इंसेंटिव्स देने की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को देखभाल करके अपने पास अपने एडमिशन में रखा। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ खेलो और मेडल जीतो। तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसेंटिव्स, कोई भी कार्य दूसरे नहीं हो सकते जो यूनिवर्सिटी कर रही है खिलाड़ियों के लिए।
भोपाल में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। डीबी सिटी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 43 अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम के थीम पर संगीत प्रस्तुति दी गई। वहीं 200 से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया और 150 से अधिक छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजकों के अनुसार इन तीनों उपलब्धियों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी से जोड़ना था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में कल शाम से वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक पड़ गई है। नर्मदापुरम कलेक्टर ने कल आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर भोपाल मार्ग का शहपुरा भिटौनी टोल अस्थायी रूप से बंद रहेगा। फ्लाईओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने और लगातार हो रहे विरोध के बीच ये निर्णय लिया गया है। खंडवा में कल जेसीआई द्वारा माटी के श्री गणेश कार्यशाला का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने कल जिले के हाईवे और मुख्य मार्गों के गांवों में संचालित गौशालाओं के संचालकों की बैठक ली। पन्ना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और किसानों के देवता बलदाऊ जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व गरिमा अनुरूप मनाया जाएगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झाबुआ में कल साप्ताहिक जन सुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का भी आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल इंदौर में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 253 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।